नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति बनाने की मांग की। केंद्र सरकार ने बिहार समेत 3 राज्यों में एनआईए की नई विशेष अदालतें गठित की। आर्थिक अपराध इकाई ने दारोगा भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों की जांच के लिए एसआईटी बनाई। और राज्य सरकार ने लोगों से बाढ़ के पानी से पकड़ी गई मछलियों का सेवन नहीं करने का किया आग्रह। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति बनाने की मांग की है। उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात कर बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण जल संसाधन, सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं की प्रगति को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने इंद्रपुरी जलाशय योजना, सोन फल्गु नदी जोड़ योजना तथा सारण जिला बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी परियोजना फेज 1 को केंद्रीय बजट 2026-27 में शामिल करने का भी अनुरोध किया है। साथ ही फरक्का बराज और भारत बांग्लादेश जल संधि से उत्पन्न समस्या, नदी की धारा में बदलाव तथा बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति एवं समर्पित कोष बनाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने नेपाल से संबंधित लंबित महत्वपूर्ण परियोजनाएं कोसी हाई डैम, कमला डैम और बागमती डैम के सर्वेक्षण तथा डीपीआर कार्य में तेजी लाने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय रिवर लिंक परियोजना सहित केंद्रीय बजट में घोषित लंबित सिंचाई एवं बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति एवं केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। बातचीत के दौरान उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई है। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि बेहद सकारात्मक है।
ओवरऑल ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव और ये यही दर्शाता है कि जो प्रकार से इंटरवेंशन हुए हैं सरकार के वो इम्पैक्ट रख रहे हैं और जबकि ओवरऑल हालात में चेंजेस है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में उसके बावजूद ग्रोथ रेट इतनी पॉजिटिव है। प्राइवेट और सरकारी दोनों के ही कारण फिक्स कैपिटल ग्रोथ में होता है और 12% का ये भी दर्शाता है कि जो फ्यूचर क्वार्टर्स की ग्रोथ है उसका भी हम एक अंदेशा देता है कि क्या है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद यह उपलब्धि देश के लोगों की सामूहिक शक्ति और दृढ़ता को दर्शाती है। केंद्र सरकार ने बिहार, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में 3 नई विशेष एनआईए अदालतें गठित की हैं। इन अदालतों में उन अपराधों की सुनवाई होगी जिसकी जांच एनआईए कर रही है। ऐसे अपराधों में आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले और अन्य गंभीर मामले शामिल हैं। पटना स्थित जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 26 की अदालत को एनआईए मामले के लिए विशेष न्यायालय संख्या 2 के रूप में नामित किया गया है। यह न्यायालय केवल एनआईए द्वारा जांचे गए अनुसूचित अपराधों के मुकदमों की सुनवाई करेगा तथा इसका अधिकार क्षेत्र पूरा बिहार होगा। इन अदालतों का गठन एनआईए एक्ट 2008 की धारा 11 के अंतर्गत संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और राज्य सरकार से विचार विमर्श के बाद किया गया है। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने दारोगा भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों की जांच के लिए विशेष अनुसंधान दल एसआईटी का गठन किया है। इस जांच दल में 4 डीएसपी और 4 इंस्पेक्टर शामिल किए गए हैं। ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि ईओयू ने धांधली की शिकायतों की जांच के लिए पूर्णिया और गया केस को अपने हाथ में ले लिया है। उन्होंने कहा कि कुछ अभ्यर्थियों की शिकायतें मिली हैं जिसकी जांच की जा रही है। अब तक की पुलिस जांच में मिले साक्ष्यों और दर्ज प्राथमिकी का अध्ययन करके जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्य सरकार ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधान पार्षद देवेश कुमार को राज्य योजना परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री कुमार का कार्यकाल 3 साल का होगा। योजना और विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उपाध्यक्ष के रूप में देवेश कुमार को राज्य मंत्री की सुविधाएं मिलेंगी। गौरतलब है कि उन्होंने पिछले महीने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इधर राज्य सरकार ने हरेंद्र बहादुर सिंह को नागरिक परिषद का महासचिव मनोनीत किया है, जबकि डॉक्टर अजय कुमार सिंह को नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही सरकार ने प्रदेश स्तरीय राज्य क्रियान्वयन कमेटी में 3 नए सदस्यों को नियुक्त किया है। कैबिनेट विभाग की अधिसूचना के अनुसार विधायक आलोक कुमार सिंह, पूर्व मंत्री अनिल कुमार और लोजपा रामविलास के नेता सुरेंद्र विवेक को सदस्य मनोनीत किया गया है। इन्हें उप मंत्री स्तर की सुविधाएं मिलेंगी। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि पार्टी के जिला अध्यक्ष अब 55 वर्ष से कम उम्र के लोग बनाए जाएंगे। पार्टी के संगठनात्मक मुद्दे पर पार्टी नेताओं के साथ चर्चा में उन्होंने जिला अध्यक्ष के लिए 4-4 नेताओं का नाम भेजने का आग्रह किया है। श्री यादव ने कहा कि वे पार्टी की जिलावार बैठक भी करेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा आज स्वच्छता पखवाड़ा 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना और कपड़े के थैलों और दोबारा प्रयोग की जाने वाली बोतलों के उपयोग को बढ़ावा देना है। ये पखवाड़ा 15 सितंबर तक चलेगा। उर्वरक विभाग ने कहा है कि इस राष्ट्रव्यापी अभियान का लक्ष्य भौतिक और डिजिटल दोनों कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना और कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार लाना है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि 2 अक्टूबर से सभी जिलों में खाद की ऑनलाइन बिक्री होगी। उन्होंने पटना में एक कार्यक्रम में कहा कि पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत वैशाली और शेखपुरा में ऑनलाइन बिक्री की व्यवस्था शुरू हुई थी। इसकी सफलता को देखते हुए अब प्रदेश भर में इसका विस्तार किया जा रहा है। श्री सिन्हा ने कहा कि विभाग ने खाद बिक्री व्यवस्था को डिजिटल और किसान केंद्रित बनाने के लिए FSAS के माध्यम से ऑनलाइन व्यवस्था विकसित की है। इसका सीधा लाभ अब किसानों को मिलेगा। नेपाल में बचाव दल त्रिशुली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर कीचड़ से भरी सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेजी से प्रयास कर रहा है। बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंपों का उपयोग कर रहा है। नेपाल के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 939 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,925 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इन लापता लोगों में 592 विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक जल विद्युत परियोजनाओं से 279 लोगों को बचाया जा चुका है, जबकि देश भर में 11,000 से अधिक लोगों को बचाया गया है। नेपाल में आई बाढ़ और बिहार में बढ़ते नदी जलस्तर के बीच पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने लोगों को बाढ़ के पानी से पकड़ी गई मछलियों का सेवन नहीं करने की सलाह दी है। विभाग के अनुसार बाढ़ के पानी में मछलियों के सीवेज, मृत पशुओं और अन्य दूषित पदार्थों के संपर्क में आने से इनके जीवाणु, विषाणु और अन्य रोगजनक तत्वों से दूषित होने की आशंका रहती है। ऐसी मछलियों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जब तक बाढ़ का पानी पूरी तरह स्थिर नहीं हो जाता और जल स्रोतों की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, तब तक बाढ़ के पानी से पकड़ी गई मछलियों का उपयोग खाद्य के रूप में नहीं किया जाए। विभाग ने आम लोगों से अज्ञात या असामान्य दिखने वाली मछलियों का सेवन भी नहीं करने की अपील की है। साथ ही बाढ़ के पानी से पकड़ी गई मछलियों की खरीद बिक्री और खाद्य उपयोग से बचने की सलाह दी गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून की ट्रफ रेखा राज्य के उत्तरी भागों से गुजर रही है। इसके प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न भागों में भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, भोजपुर समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में कई स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। सबसे अधिक 145.4 मिलीमीटर बारिश औरंगाबाद के गोह में दर्ज की गई। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज औरंगाबाद, गया, कैमूर और रोहतास जिले में कई स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की आशंका है।
दिनांक 1 सितंबर को राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की बहुत संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के औरंगाबाद, भभुआ, गया जी एवं रोहतास जिलों में अति भारी वर्षा, जबकि बेगूसराय, बक्सर, जहानाबाद, खगलिया, लखीसराय, नवादा, नालंदा एवं शेखपुरा में भारी वर्षा होने की संभावना है।
सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड हमलों के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि क्या एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे सख्त नियमों के दायरे में लाया जाना चाहिए। और अब खबरें खेल जगत से। चीन के किंगदाओ में आयोजित होने वाली एशिया रग्बी अंडर 18 चैंपियनशिप के लिए घोषित भारतीय टीम में बिहार के 8 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। बालक टीम का कप्तान पटना के रोहित कुमार, जबकि पटना की सलोनी कुमारी को भारतीय महिला रग्बी टीम की कमान सौंपी गई है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में आयोजित 10वीं शूटिंग चैंपियनशिप में राज्य के खिलाड़ियों ने 10 स्वर्ण समेत 19 पदक जीते हैं। पटना के प्रथम चक्रवर्ती ने अलग अलग वर्गों में 4 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। भुवनेश्वर में 3 सितंबर से खेली जाने वाली पूर्वी क्षेत्र इंटरस्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए बिहार पुरुष, महिला, जूनियर बालक और जूनियर बालिका टीम की घोषणा कर दी गई है। पटना में आयोजित 7वीं राज्य माउंटेन साइकिलिंग चैंपियनशिप के सीनियर पुरुष 20 किलोमीटर क्रॉस कंट्री मास स्टार्ट में कैमूर के राकेश रंजन ने स्वर्ण पदक, जबकि महिला वर्ग में बेगूसराय की बबली ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, बिहार झारखंड में सोन के जल बंटवारे का विवाद खत्म, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों में बनी सहमति। दैनिक जागरण ने केंद्र सरकार के निर्णय के हवाले से लिखा है, एससी एसटी को गंभीर बीमारियों से मिलने वाली मदद का दायरा बढ़ा। दैनिक भास्कर ने शिक्षक स्थानांतरण पर लिखा है, अब 5 सितंबर को जारी होगी ट्रांसफर की औपबंधिक सूची। प्रभात खबर की सुर्खी है, TRE4 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्थगित। आज अखबार लिखता है, विश्वविद्यालयों में होगी पीजी के समान पाठ्यक्रम की पढ़ाई। राष्ट्रीय सागर ने बाढ़ की खबर पर लिखा है, बिहार में बाढ़ से 20 जिले प्रभावित, 5600 लोगों का किया गया रेस्क्यू। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति बनाने की मांग की। केंद्र सरकार ने बिहार समेत 3 राज्यों में एनआईए की नई विशेष अदालतें गठित की हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने दारोगा भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों की जांच के लिए एसआईटी बनाई। और राज्य सरकार ने लोगों से बाढ़ के पानी से पकड़ी गई मछलियों का सेवन नहीं करने का आग्रह किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।